प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय महाराज श्री के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणामों को अर्पित करते हुए उन पावन कर्ण रसाय पावन कर्णों को भी भगवत कथा के द्वारा पवित्र करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है कि इस संसार में जो काल है वह सबको हैरान किए हुए है और काल का स्वरूप एक सर्प के समान है, क्योंकि काल सर्प है, वह सबको डस लेता है, सबको कुछ न कुछ समय दिए रहता है। वैसा जो काल है वह ब्याल है, काल ब्याल, हाँ, और वह कराल है और बलि भी है, और उससे बचना बड़ा कठिन है। ऐसे काल रूपी कालिया का मर्दन करने वाले जो कान्हा कृष्ण है, उनकी जब कथा की बात आती है, जिन्होंने कालिया को मर्दन किया, कहते ओ कालिया तेरा क्या होगा, तो वो कालिया का क्या होने वाला है, भगवान श्री कृष्ण ने उसको गति दिया। यह काले को काले ही संभाल सके, दूसरा क्या संभालेंगे, है ना। यो यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। दुष्ट व्यक्ति स्तुति से नहीं मानता है, शनि जैसे दुष्ट ग्रहों को हनुमान जी जैसे देवता चाहिए प्रसाद देने के लिए, अन्यथा उनको प्रेम से आप मनाने जाएंगे तो मानने वाले नहीं है। तो ऐसे ही भगवान जो सज्जनों के लिए परित्राण करते हैं, सज्जनों का रक्षा करते हैं, और दुष्टों के जो आतंक है उस आतंक से सबको निरातंक बना देते हैं। तो कालिया का भी जो आतंक था वह कम नहीं था, उसके विष के चलते ब्रज की गायें अमृत जल को जिसमें साक्षात नारायण का वास है उसको उसने विषाक्त कर दिया था। जल का जो विष है वह जीवन को नष्ट कर देता है, गायें कैसे पानी पिएंगी, इस तरह की भयानक स्थिति थी। भगवान तो सब संजोग के अधीन सब कुछ हुआ करता है, खेलते खेलते भगवान का कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, गेंद उछालना, धरती से नीचे ऊपर फेंकना, ऊपर से नीचे फेंकना, इसमें उनका गेंद जा पड़ता है। जहां कालिया नाग रहता है, प्रभु ने सोचा कि इसी बहाने खेलते खेलते हम यह लीला कर डालें तो बड़ी ही अच्छा होगा, तो बॉल के बहाने अपने गेंद के बहाने जाते हैं। उस कालिया नाग का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र विशेष को उसने इतना दूषित कर दिया है अपने विष से, उस कुंड विशेष को, नदियों के भी किनारे किनारे जो स्थिति होती है कुंडों की, जहां विशेष करके जलावर्त होता है, जल ऐसे भ्रमी के तरह से घूमते रहता है, क्षेत्र विशेष, जैसे इस आश्रम में क्षेत्र है अलग अलग खंड बांट दिया है, सत्संग खंड ये खंड, उसी तरह से नदियों में भी जलीय जीव अपना रहते हैं। तो यमुना जी में कालिया अपना साम्राज्य फैला करके था, जैसे जेलों में आतंकवादी पुलिस वाले के बीच में भी डॉन गिरी करते हैं, सब कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए, उनका साम्राज्य होता है, वैसे भी यमुना जल में कालिया का अपना आतंक था, विषाक्त जल को कर रखा था, जो जल जीवन है। वहां ऐसी स्थिति थी कि उसके विष से जो वहां के वृक्ष थे किनारे के वो सब भी सूख गए थे, विष से जल गए थे सब, और जल इतना दग्ध था उसके विष से कि वहां चलने वाली जो वायु थी वह भी दूषित हो गई थी, मतलब जल और वायु जब दोनों दूषित हो जाए तो व्यक्ति कैसे जीवन जिएगा। कहा कि महाराज वायु कैसे दूषित हो गई थी, तो कहा कि नागों का आहार जो है वो वायु होता है, इसलिए वो जो वायु श्वास लेकर के छोड़ता था तो जहरीली हवा के चलते उसका वायु वहां का दूषित हो गया था, और जल में रहता था इसलिए जल दूषित हो गया था। तो जल और वायु ये दोनों ही हमारे जीवन के आवश्यक तत्व हैं, और ये दोनों दूषित हो गए थे, जैसे आज दूषित हो रहे हैं। इसके लिए हम ही कारक ग्रह हैं कि क्यों ये दूषित होते हैं। तो वैचारिक स्थिति से सब सारी बातें आती है, उसकी बात न करके आगे की बात करता हूं। भगवान साक्षात उस कुंड में बॉल जाता है और कूद पड़ते हैं, उसका शस्त्र ही विष है। विष जैसे उगले ना, किसी को बिच्छू का डंक मारा हो अथवा किसी को कोई विषाक्त जीव ने कुछ कभी काटा हो तो उसे उसका आभास होगा कि विष कितना खराब होता है। विष मतलब जो विषम है, जो विषम है हमारे जिंदगी को में विषमता लाकर उपस्थित कर दे, हमको चेत से अचेत बना दे, ऐसा वो विष भगवान ने सोचा कि यह कालिया हमारा जो वाहन था गरुण, उसके भय से भाग करके और यहाँ शरण लिया है। गरुण का और सर्पों के साथ बड़ा विरोध है, यद्यपि विष्णु और शिव का विरोध नहीं है लेकिन गरुण का सर्प से विरोध है। एक बार की बात है कि भगवान विष्णु आ रहे थे, शिव जी ने क्या किया, अचानक मृग चर्म लपेट लिया, क्योंकि भोला दिगंबर हर हर बम बम, भगवान भोलेनाथ कुछ पहनते हैं नहीं, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र है। सोचा कि भगवान विष्णु आ रहे हैं हमारे आराध्य, इसलिए थोड़ा मर्यादित हो जाना चाहिए, इसलिए वाघांबर वो लपेट करके मृग चर्म अपना और सर्पों से बांध लिया। अब उधर से भगवान गरुण वाहन विष्णु चले आ रहे थे, अचानक गरुण को देख करके जो सर्प हैं वो छटपटाए कि हमारा शत्रु आ रहा है, और धीरे से वो खिसक पड़े। भगवान का जितना वस्त्र है वो भी नीचे गिर गया, शिव जी का मुंह जो है वो नीचे शर्म के मारे हो गया, एक हाथ से पकड़े। तो ये जो जब विरोधी तत्व आते हैं और आपस में कलह करते हैं कहीं, तो वहां स्वामी की भी स्थिति गड़बड़ होती है। भगवान ने सोचा कि यह कालियां हमारे परम मित्र शिव जी, उनको नंगा किया था इसलिए इसका मर्दन जरूरी है, क्योंकि यद्यपि ये गरुण को देख करके गया तो, क्योंकि उन दोनों में बड़ा ही अभेद संबंध है, जहां जो जरूरत पड़ती है वो हमें वहां करना पड़ता है, इस हेतु से उसको फिर सोचा कि यहाँ और भी एक आपत्ति है कि जो गाय है वो जल नहीं पी पाती है, तो गायों का जीवन यह बाधित करता है, गाय जल नहीं पीती है, विषाक्त है जीव, और मेरा जो अवतार है वह दुरात्माओं को मारने के लिए ही हुआ है, इसके लिए जो नागराज जहां रहता था कालिया उसके कुंड में भगवान कूद पड़ते हैं। जैसे ही कूदते हैं कालिया नाग ऐसे घूम करके उनको लपेट लेता है अपने आप में, जैसे रस्सी से कोई किसी को बांध देता है, जैसे हनुमान जी को रस्सी से बांध दिया था मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा, ऐसे रस्सी चारों तरफ से शरीर से अपना बांध लेता है। भगवान जल से भीगे थे, आश्रय वृक्ष को उखाड़ा, ऐसे हिलोरा दिया, लेकिन उसने क्या किया, अपना विष उगलना और डंग मारना चालू किया। भगवान उसको खूब जागृत कर रहे हैं, जैसे सपेरा सर्प को दिखाने के लिए जागृत करता है, ऐसे ऐसे मारता है, जब ऐसे ऐसे मारेगा तो उसको चीड़ आएगी, गुस्सा आएगा, जब गुस्सा आएगा तो क्रोध क्रोधाग्नि जब दीपित होगा तो तुरंत मारेगा, ऐसे किसी को उद्दीप्त करिए। उद्दीप्त करने के बाद वो कालिया नाग युद्ध के लिए तैयार हो गया, क्योंकि पहले शत्रु को संहार करना हो तो नीति यह कहती है कि उसका बल उसका पराक्रम कितना है इसको पहले जान लिया जाए, इसके लिए उसे पहले खोदते हैं थोड़े से कि कितना है दम। फिर क्या था, वो ऊपर आया जोरदार अपने स्वरूप में ऐसे झूमते हुए, और उसके साथ सैकड़ों नाग पत्नियां भी थी, अकेले नहीं रहता था, उसके साथ नाग पत्नियां भी थी। उसका शरीर कंपायमान होने लगा, नाग कुंड में भगवान श्री कृष्ण को पीड़ित करने के दृष्टिकोण से उसने मारा भगवान को, थोड़े क्षण के लिए लगा कि मूर्छा आ जाएगी। इधर गोप